सानिया ने अपनी बात कही और उसके बगल से निकलकर जाने ही वाली थी कि अन्वय ने उसकी कमर में अपनी बाँह डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। उसके अचानक ऐसा करने से आनिया संभल नहीं पाई और उसके सीने से टकरा गई। उसकी दोनों हथेलियां उसके कंधे पर आ टिकीं। उसने अपनी नम आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। अन्वय ने उसके गाल पर हथेली रखते हुए उसकी गर्दन पर भी हाथ फिराया और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अपनी बात कह दी और जाने लगी? मेरा जवाब नहीं सुनना चाहोगी? मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए? ये नहीं सुनना चाहोगी कि क्यों लाया था तुम्हें यहाँ? क्यों नहीं जाने देता तुम्हें खुद से दूर? जानती हूँ मैं, मेरी जान को खतरा है और तुम मुझे अपनी वजह से मरने नहीं चाहते, इसलिए मुझे यहाँ लाकर रखा हुआ है। आनिया ने दर्द से भरे शब्द अन्वय के कानों में शीशे के टुकड़े की तरह चुभने लगे। उसने उसके चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, कुछ नहीं पता है तुम्हें। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पता है मुझे, तुम्हें मुझसे कोई मोह। उसने इतना ही कहा था कि अन्वय ने उसके हिलते हुए लाल लबों को अपने शुष्क होंठों से ढक लिया। आनिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। अन्वय उसकी आंखों में झांकते हुए कुछ पल उसके होंठों को प्यार से चूमा, फिर थोड़ा पीछे हटा और उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीरता से बोला, कुछ नहीं पता है तुम्हें, मेरी तुम्हारे लिए दीवानगी, मेरी मोहब्बत, सबसे अनजान हो तुम। नहीं, झूठ बोलते हो तुम, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम भी मेरा फायदा उठाना चाहते हो, उस निहाल की तरह। छोड़ो मुझे, अब मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मुझे किस करने की? आनिया गुस्से में भड़क उठी और उसे दूर होने के लिए छटपटाने लगी। वो लगातार बड़बड़ा रही थी। अन्वय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके होठों को अपने अंगूठे से दबाते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम, कभी सामने वाले को भी अपनी बात रखने का मौका दिया करो। आनिया अब गुस्से से उसे घूरने लगी। अब वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। अन्वय के होंठ हल्के से मुस्कुराते हुए खिंच गए। उसने उसे अपने और भी करीब खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपने करीब आने का हक बहुत पहले दे चुकी हो। हाँ, मैंने उस हक का इस्तेमाल आज पहली बार किया है, पर मैं निहाल की तरह तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। ऐसे कोई नेक इरादे नहीं है मेरे, मैं तो बस तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि जैसे तुम्हारी दीवानगी मुझसे है, वैसे ही मेरी दीवानगी सिर्फ तुमसे है। उसके इतना कहते ही आनिया एकदम शांत हो गई और हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर गई। अन्वय ने उसके भाव देखकर मुस्कुराते हुए आगे कहा, यकीन नहीं हो रहा तुम्हें मुझ पर, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने अपना माथा उसके माथे से लगाया और उसे आंखें बंद करने को कहा, तो आनिया की आंखों के सामने जंगल का वो दृश्य घूम गया। जब वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए चल रही थी, तब पेड़ की ओट में छिपा अन्वय एक टक उसे देख रहा था। ये देखकर आनिया के भाव बदल गए, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। जैसे ही उसे किसी के होने का एहसास हुआ, वो डरकर भागने लगी और दलदल में गिर गई। तभी अन्वय ने पीछे से उसे उठा लिया और ले जाकर उसे झरने के पास छोड़ दिया। उसके बाद आनिया ने देखा कि अन्वय वही पेड़ के पीछे खड़ा उसे नहाते हुए मस्ती करते हुए देख रहा था, और जैसे ही उसने किसी की निगाहों को भांपते हुए पेड़ की ओर कदम बढ़ाए, अन्वय एकदम से उसके सामने आ गया और वो डरकर वही बेहोश हो गई। उसके बाद अन्वय ने अपना रूप बदला और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए हवा की गति से वहां से गायब हो गया और चुपके से उसे उसके कमरे में उसके बिस्तर पर लिटाया। मतलब उस दिन अन्वय ही था जिसने उसे बचाया था। ये समझ आते ही आनिया ने हैरानी से अपनी आंखें खोल दीं। अन्वय ने उसके सिर से सिर लगाए हुए ही उसकी आंखों में झांकते हुए आगे कहना शुरू किया, उस दिन जंगल में तुम्हें जब पहली बार देखा था, तब तुम्हें देखते ही दिल जोरों से धड़कने लगा था, जैसे जाने कितने बरसों से उसे तुम्हारा ही इंतजार हो। तुम्हारी बस एक झलक ने मुझे अपना दीवाना बना दिया था, पर मुझे देखते ही तुम्हारा डरकर बेहोश हो जाना सबूत था इस बात का कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अरे वो तो, आनिया उसकी बात काटकर जैसे ही कुछ कहना चाहती थी, अन्वय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें चुप कराते हुए कहा, चुप, अब तुम एक शब्द नहीं कहोगी, खामोशी से मेरी बात सुनोगी। आनिया ने पलकें झपटाकर सहमति जाहिर की तो अन्वय ने आगे कहा, मैं उसी पल समझ गया था कि इस शरारती लड़की ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है, पर तुम एक आम लड़की थी और मैं वैम्पायर, हमारा कोई जोड़ ही नहीं था। फिर वो मुलाकात भी इत्तेफाक से हुई थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि जो एहसास तुम्हें देखने से मेरे अंदर जागे हैं, उन्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा, कभी दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। पर स्टेशन पर जब तुम्हें देखा तो तुम्हारी हालत देखकर चौंक गया, दिखाता रहा कि अनजान हूँ, नहीं फर्क पड़ता तुमसे मुझे, पर फर्क पड़ रहा था मुझे। तुम्हें इस दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ने को दिल नहीं मान रहा था, पर किस हक से तुम्हारी मदद करता, तुमसे दूर रहने का फैसला लिया था, पर तुम खुद मेरे पास चली आई, तुमने सामने से खुलकर मदद मांगी, और मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो तुम्हें अपने साथ ले गया।
हम साथ रहने लगे, पर मैंने कभी तुम्हारे लिए अपने प्यार और दीवानगी को जाहिर नहीं होने दिया। जानता था एक ना एक दिन हमें अलग होना होगा। तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं जगाना चाहता था जिससे हमारे जुदा होने पर तुम्हें तकलीफ हो या मैं तुम्हारे दर्द की वजह बन जाऊं। इसलिए दिल में बेहद मोहब्बत होने के बाद भी तुमसे दूरी बनाए रखता था, पर मेरी लाख बेरुखी दिखाने के बाद भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। चाहकर भी अपना नहीं सकता था तुम्हें, क्योंकि तुम एक आम इंसान हो। अगर मेरे साथ रहोगी तो पल पल तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। हर तरफ से दुश्मनों से घिरा था मैं।